نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس میرا اتباع کرو، مجھے فالو کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اس آیت قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جتنے آنے والے انسان ہیں سب کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا. اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کہ ان کو فالو کرنا پڑے گا. اگر تم ان کو فالو کرتے ہو تو پھر تو دیکھو اللہ کی محبت تمہیں مل جائے گی، لیکن اگر تم ان کو فالو نہیں کرتے تو پھر اللہ کی محبت نہ مغفرت کچھ نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذات ہے جن کی زندگی کو ہمارے لیے اپروو کر دیا، سٹیمپ لگا دی ان کی زندگی پر کہ یہ ہے وہ زندگی جو مجھے پسند ہے، ایک کرائیٹیریا دے دیا ہم سب کو اور بتا دیا کہ دیکھو جو جو اس کو فالو کر کے آئے گا وہ اللہ کے ہاں بھی پسند، اور جو اس زندگی سے ہٹ کے آئے گا وہ اللہ کو پسند نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اس رسول کی زندگی میں بیسٹ ایگزامپل ہے، بہترین. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب الحمدللہ محبت کرتے ہیں اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اگر محبت نہ کریں تو ہم ایمان والے ہی نہیں کہلاتے. ہمارے ایمان کا تقاضا یعنی ریکوائرمنٹ ہے. ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے اہل خانہ سے، اس کے مال سے اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جائے تب تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اس کا ایمان مکمل، ہم جتنا مرضی کہتے رہے ہم ایمان والے ہیں، ہم بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، جب تک آپ کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے نا، اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. اتنی زیادہ محبت، تھوڑی بہت نہیں، تھوڑی بہت سے گزارا نہیں چلے گا. اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہر ایک سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ ہے، اپنے گھر سے زیادہ ہے، اپنے پیرنٹ سے زیادہ ہے، اپنے ہسبینڈ سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ ہے. آنیسٹلی انسان اپنے آپ سے پوچھے. اور یہ محبتیں نا کوئی زور زبردستی کا سودا نہیں ہوتے. محبت ایسے نہیں کسی سے کی جا سکتی کہ میں آپ کو کہوں وہ دیکھیں پاکستان میں ایک آدمی بیٹھا ہے آپ اس سے محبت کریں، ایسے تو نہیں ہو سکتی. محبت ایک جذبہ ہوتا ہے، اور محبت کسی کے لیے تبھی پیدا ہوتی ہے جب آپ اس کو جانتے ہیں، جب اس کی پہچان ہو. آپ یہاں پہ، ہم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تو نہیں کر سکتے، کیسے ان کو جان سکتے؟ پھر مل نہیں سکتے جا کے، ان کو جانیں گے پھر کیسے؟ ان کی سیرت کو پڑھ کے، ان کے بارے میں واقفیت حاصل کر کے، ان کے طور طریقے، ان کے حسن معاشرت، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی زندگی کو سمجھ کے تبھی ان سے محبت ہو سکتی. اور یہ دین کا تقاضا ہے آپ سے کہ آپ ان سے محبت کریں. کیوں اتنا زور ہے محبت؟ کچھ پتا آپ کیوں اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا کہ ان سے محبت ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ محبت ایک بہت ہی پاورفل جذبہ ہے. ایک ایسا جذبہ ہے کہ جب انسان کو کس سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، کیا وہ چیز تھی کہ آگ میں کودنے کو تیار ہو گئے؟ वरना कोई और किसी इंसान को कहें कितने भी पैसे दें और कहें कि आग में कूद जाओ, नहीं कूदेगा। तो ये क्या चीज थी? वो मोहब्बत थी। अल्लाह की खातिर जो मोहब्बत है वो आग में कूदने के ऊपर भी इंसान को आमादा कर देती है। आज आप देखें लोगों को, ये लोग फैंस होते हैं इनके, बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस, कोई कुछ इनके फैन होते हैं, तो कैसे वो उनके बारे में जानते हैं, उनकी जिंदगी को ऊपर नीचे कंगाल के रख देते हैं, उनकी आदत क्या है, वो कब उठते हैं कब बैठते हैं, क्या उनको पसंद है क्या नापसंद है, सब चीजों की उनकी वाकफियत रखते हैं। क्यों? मोहब्बत है। इसीलिए फरमाए मोहब्बत करो। जब मोहब्बत होगी ना, उनका कोई भी कहना, उनका कोई भी हुक्म आपके लिए फॉलो करना मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें मोहब्बत के साथ आती हैं। और उनसे मोहब्बत कैसे करनी? अब हम सब चाहते हैं कि हम मोहब्बत का इजहार करें, हम सब चाहते हैं कि हम इस चीज के अंदर पूरे उतरे जो हमारे दीन का तकाजा है, उनसे मोहब्बत करने का। उसके लिए फिर हम कभी कोई तरीका अपनाते हैं, कभी कोई तरीका अपनाते हैं। तो मोहब्बत कहाँ से सीखेंगे आप? कैसे उनसे मोहब्बत कीजिए? अपने अपने तरीके बना ले। आपका दिल चाह उठ के उल्टे लटक गए सुबह को और कहा कि मुझे बड़ी मोहब्बत है, किसी का दिल चाह तो वो कुछ और करना शुरू कर, कहने लगा मुझे बड़ी मोहब्बत है, कोई मिठाई बांट रहा है कह रहा है मुझे बहुत बहुत मोहब्बत है, कोई उनका विलादत का दिन मना रहा है कह रहा है मुझे बहुत मोहब्बत है। हर एक अपने अपना तरीका कर रहा है। मोहब्बत हम कहाँ से सीखेंगे? मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप से मोहब्बत नहीं करके बनाएंगे, मोहब्बत कहाँ से सीखेंगे? उनसे जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है और उसके बाद मेरे सहाबा का और उसके बाद जो उनके बाद आने वाले और उसके बाद जो उनके बाद आने वाले, यानी बेस्ट टाइम कौन सा है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम था वो बेस्ट टाइम। अब हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत की, उनसे हम सीखेंगे। बाकी सारी जिंदगी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखेंगे क्या करना है, लेकिन अपने रसूल से मोहब्बत कैसे करनी है वो उनसे सीखेंगे जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। वो कौन है? कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्हाब थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे मोहब्बत करके दिखाई, उन्होंने क्या तरीके अपनाए? ये ना हो कि हमने जो मोहब्बत के तरीके अपनाए हैं उनकी जरूरत नहीं है। असल जो मोहब्बत के तरीके हैं वो सहाबा से सीखे, उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरह से उन्होंने मोहब्बतों का इजहार किया, किस तरह से उन्होंने अपनी मोहब्बतों को प्रूव किया, क्योंकि उनसे ज्यादा मोहब्बत हमें नहीं हो सकती अपने नबी से। एक आदमी था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी इसके लिए क्या तैयारी है? उसने कहा तैयारी तो मेरी कोई ऐसी खास नहीं, बस ये बात है कि मुझे अल्लाह और उसके रसूल से बेहद मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जिसको जिससे मोहब्बत है ना वो उसी के साथ होगा कयामत के दिन। यानी उनको इतनी ज्यादा मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये नहीं था कि आप कोई हुक्म दें तो वो करते हो, बल्कि क्या था, बगैर हुक्म दिए बगैर कोई बात कहे हुए, जैसे आप समझे कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप बहुत आपको प्यार है, अब वो ये नहीं कहेगा मुझे प्यास लगी हुई है तो आप मुझे शरबत पिलाएं, मुझे भूख लगी हुई है मुझे खाना खिलाएं, आपको जब उससे मोहब्बत होती है ना वो आपको बड़ा प्यार है, आप उसकी शक्ल देख के ही पहचान जाते हैं, हाजिर करते हैं, समझ जाते हैं कि इसको इस वक्त इस चीज की ख्वाहिश है। इसी तरह सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी मेरे ये चीज फॉलो करो ये चीज फॉलो करो, सहाबा कराम खुद ब खुद फॉलो करते जाते थे। इसको कहते हैं इत्तेबा। पैरवी और इत्तेबा में यही फर्क है। पैरवी किस चीज को कहते हैं? कि जब आपको कहा जाए तो आप वो फॉलो करें। इत्तेबा क्या है? बस फुट स्टेप्स को फॉलो कीजिए, जिस पे जिन फुट स्टेप्स पे कोई चला है ना उस फुट स्टेप्स को एज इट इज फॉलो किया जाए, ये है इत्तेबा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा ने इत्तेबा की, यानी इससे अंदाजा लगाइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कुर्ते का बाजू लंबा था, उसको काटने के लिए अपने बेटे से फरमाने लगे छुरी लेकर आओ। उन्होंने कहा छुरी की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा मैंने देखा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि کو ایک دن اپنا کرتا کاٹنے کی حاجت ہوئی تو انہوں نے چھری سے کاٹا. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی اور چیز نہ ہو, لیکن ایسی چیزوں میں بھی جن میں کوئی دین کا معاملہ نہیں تھا ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انٹر, تو آپ نے جوتے اتار دیے, صحابہ نے بھی سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جوتے اتار دیے. آپ نے پوچھا تم نے کیوں جوتے اتارے, انہوں نے فرمایا ہم نے اس لیے اتارے کہ آپ نے جوتے اتار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو ابھی جبرائیل نے کہا ہے کہ آپ کے جوتوں پہ کوئی گندگی لگی ہوئی, میں نے اس لیے اتار دی. لیکن وہ یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ ہمیں حکم ملے تو ہم مانیں گے, ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا تھا کہ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. محبوب کی تو ہر ادا پیاری ہوتی ہے. حضرت عمر وہاں سے جان بوجھ کے ٹھوکر کھا کے گزرتے تھے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی. حضرت ابن عمر جب سفر کرتے تھے تو اس جگہ پہ ہی جا کے کھڑے ہوتے تھے, رکتے تھے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں رکا کرتے تھے, چاہے ضرورت نہیں بھی ہو کہ میرے نبی یہاں پہ رکے تھے. تو ان لوگوں کے لیے کیا چیز تھی, ان لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا بس وہ ان کے لیے کافی ہوا کرتا تھا. کیونکہ صحابہ کسی حکم دینے کی, کسی بات کو کا آرڈر ملنے کی کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے, ان کی محبتیں بے لوس تھیں اور وہ ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کرتے تھے. ہر کام میں, دین کا ہو دنیا کا ہو, ان کی زندگیوں کا ایم کیا بن گیا تھا, انہوں نے واقع اس وقت اگزامپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. ہماری طرح نہیں کہ بس اوپر اوپر کی باتیں اور بھائی ہمیں بڑی محبت ہے اور بہت آجزی ہے اور ہم نے دو تین نعتیں پڑھ لی اور ہم نے سوچا ہمیں بہت بڑی محبت ہے. ہماری محبتوں کی تو کیا بات کریں, تھوڑا سا آئینہ آپ کو دکھاؤں. آپ کی نہیں صرف بات کریں, میں تو نہیں جانتی کہ آپ کا کیا حال ہے, مگر امت کا اوور آل کیا کرتے ہیں, ہماری محبتوں کا حال کیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ بنا کے کوئی آ جائے, ویسی کسی کی داڑھی ہو, ہم کیا کہتے ہیں اس کو, دل سے بتائیں کتنے کارٹون لگ رہا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی کھانا کھاتا ہوں ہم کیا کہتے ہیں, بالکل گنوار ہے یہ, ان کو تو کھانے کا پتہ ہی نہیں, تمیز ہی. کسی کی ٹخنوں سے اونچی شلوار دیکھ لیں, ٹخنوں سے اونچی پینٹ کیے ہوئے دیکھ لیں, کیا کہتے ہیں اس کو, بالکل پینڈو ہے. یہ ہماری محبت ہے, ہمیں تو محبت نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم, کسی اور کو نہیں دھوکہ دیتے, یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, اگر ان کو شعور ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے نبی کے صحابہ تو وہ تھے کہ ابو عبیدہ بن جراح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں دشمنوں کی طرف سے اتنی زیادہ یعنی مزاحمت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, صحابہ کی طرف سے, لیکن دشمنوں نے ایسا گھیرا ڈال دیا ہوا تھا اور ایسے ایسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے, ایسے تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس وقت شہید ہو گئے تھے. دشمن کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ احد کے پاس احد پہ آپ نے پناہ لی ہوئی ہے, وہ پہاڑ پہ چڑھ دو تیروں کی برسات کرنے تھے, ہر طرف سے تیر ہی جھینک تھے اور مسلمانوں کا یہ حال تھا, سارے تتر بتر ہو چکے تھے. ایسے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور 10 اور صحابہ تھے جنہوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد اور تیر اپنے سینوں پہ کھا رہے تھے. اتنا زیادہ جنگ کا زور تھا, جب زور ذرا تھوڑا کم ہوا, تھوڑی صورتحال بہتر ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی توجہ ہوئی, دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے, پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی, آپ کے رخسار مبارک میں وہ جو ہیلمٹ ہوتا نا, وہ اس کے دو حلقے پیوست ہو چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت جب دیکھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تیزی سے آگے بڑھ کہ یہ آپ کے رخساروں سے یہ دھنسے ہوئے خود کے حلقے نکال. تو ایسے میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا یہ جو خدمت ہے مجھے کرنے دیں, یہ کام میں کروں گا. ان کا شوق دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے. ابو عبیدہ بن جراح کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے ہاتھ मुंह से निकाला ना इन कीलों को तो आपको तकलीफ होगी। तो उन्होंने इस तरह किया कि दांत मजबूती से एक हल्के में गाड़ दिए और पूरे जोर से हल्के को निकाला, लेकिन इस कोशिश में उनका एक दांत शहीद हो गया, एक दांत टूट गया। फिर दूसरे हल्के में अपना दूसरा दांत डाला और इसी तरह दूसरा हल्का निकाला और उस कोशिश में दूसरा दांत भी टूट गया। सहाबा फरमाते हैं कि जब उनके दांत टूट जाना टूट गए ना, तो वो हमें और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा प्यारे लगने लगे। क्यों? कि ये दांत हमारे नबी के लिए टूटे, ये उनके लिए शहीद हुए, तो हमें और भी ज्यादा अच्छे लगते थे। एक सहाबी थे, बिस्तरे मर्ग पे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उन्होंने अपना जिस्म घसीट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कर लिया, अपने गाल आपके पांव से रगड़ने लगे, फरमाने लगे कि और इससे ज्यादा मेरी क्या ख्वाहिश होगी कि मैं मरते वक्त अपने महबूब के पास हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, जब वो उनकी वफात का वक्त करीब था ना, अपने घर वालों को बुला के फरमाने लगे कि अगर मैं आज रात फौत हो जाऊँ, आज कौन सा दिन, अगर अगर आज रात में फौत हो गया मुझे आज ही दफना देना, खुदा की कसम मुझे सारे दिन और रातों में से सबसे ज्यादा वो दिन और रात प्यारी है जो मुझे मेरे नबी के ज्यादा करीब करे, ज्यादा मैं उनके करीब। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई थी, मिंबर पे फरमाया करते थे पिछले साल इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था और पिछले साल ये फरमाया था इस दिन और इस वक्त ये फरमाया था, और साथ फूट फूट के रो देते थे। वो तो उनको याद करते थे और रो पड़ते थे। उनकी जिंदगियों का मकसद ही ऐसा था कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं तो वो जिंदा है। हजरत खुबैब जो थे सहाबी रसूल हैं, उनको काफिरों ने धोखे से पकड़ लिया था। दरअसल जंगे बदर का उन्होंने बदला लेना था अपने रिश्तेदारों के कत्ल का, तो सरे आम फांसी चढ़ाने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। औरतें बच्चे जवान सारे जमा हो गए, एक चीखो पुकार एक शोर शराबा था, सारे कह रहे थे इसको लटकाओ यहाँ पे। जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो कहने लगे मुझे मेरी आखिरी ख्वाहिश बस ये है कि मुझे दो रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दीजिए। फिर कबला रुक होकर दो रकत नमाज पढ़ने लगी। ये दो रकतें कैसी थी, इतनी सुकून वाली और ऐसी मुकम्मल। जब नमाज से फारिग हुआ फरमाया बखुदा अगर मुझे ये ख्याल ना होता ना कि तुम समझोगे कि मैंने पता नहीं नमाज मौत के खौफ से लंबी करती है तो मैं और देर लगाता। फिर काफिरों ने उनका जिंदा मुसला किया था, मुसला समझते हैं यानी एक एक उनका बॉडी पार्ट जो है ना जिंदा का काटा, और वो साथ साथ कहते जा रहे थे क्या तुम्हें ये पसंद है, तुम्हारी जगह जैसे होता है दुश्मन थे जाहिर है तो वो इस तरह की बातें कर रहे थे, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं तुम्हारी जगह पे इस वक्त यहाँ पे मोहम्मद होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम बच जाते, क्या ये तुम्हें पसंद ना आता। फरमाते थे वल्लाह मुझे ये कतन गवारा नहीं कि मैं तो अपने घर वालों में चैन से बैठूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। ये थी उनकी मोहब्बत, यानी उनसे हर एक ने मोहब्बत की। ये तो यानी जवान थे, आप ये इंतहा देखें कि बच्चे तक, आज हमारे बच्चों को कितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म है, हमें कोई नहीं इल्म है तो बच्चों को तो खैर फिर एक तरफ ही करें। अगर हमसे पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में बताओ, उनके बच्चे कितने थे, उनकी अजवाज कितनी थी, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी, उन्होंने क्या किया, क्या पसंद करते थे क्या नापसंद करते थे, उनके तरीके क्या थे, कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं पता। उनकी वफात कब हुई, उनकी मक्की जिंदगी कैसी थी, उनकी मदनी जिंदगी कैसी थी, उनका अपनी औलाद के साथ क्या बर्ताव था, उनका लोगों के साथ क्या बर्ताव था, कुछ नहीं पता। बस दो चार वाकयात हैं वो एक आध को सुन चुके हैं कहीं ना कहीं, तो बस वो हमें बयान करने आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पता। क्या उनकी सुन्नतें थी, हमारी जिंदगी में उनके तरीके कितने हैं, कोई नहीं पता। तो ये तो वो है कि जिनसे बच्चों तक ने मोहब्बत की, कि जिस वक्त एक जंग थी जिसमें के जंगे बदर थी, तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ एक मशहूर सहाबी, आपने नाम भी सुना होगा, वो फरमाते हैं कि जंग में जब सफे दुरुस्त की गई तो मैं जिस सफ में खड़ा होता मैंने देखा मेरे दाएं और बाएं दो छोटे छोटे लड़के खड़े हुए थे, यंग लड़के बिल्कुल, यानी बिल्कुल कम उम्र लड़के। कहते मेरे दिल में बड़ा ख्याल आया कि अगर कोई मजबूत लड़के होते, कोई ताकतवर जवान कोई होते बड़े, तो अच्छा होता कि जरूरत के वक्त इंसान को जंग में जरूरत पड़े तो कोई ताकतवर तो बंदा होता, ये क्या बच्चे मेरे साथ खड़े। कहते अभी मैं ये सोच ही रहा था कि इतने में उन दोनों में से एक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहा, चचा जान, उस वक्त जमाने में किसी भी बड़े को ना एहतराम के तौर पे चचा कहा करते थे, चचा जान ये अबू जहल को आप पहचानते हैं? क्योंकि ये तो जानते थे ना अबू जहल को। ये बच्चे अंसारी थे, इनको तो नहीं पता था, ये तो मदीना के रहने वाले थे, इनको क्या पता अबू जहल कौन? उन्होंने कहा हाँ पहचानता हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या अबू जहल कौन है? कहते हमें पता चला है कि वो हमारे नबी की शान में गालियां देता है, गालियां बकता है, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान, अगर मैं उसको देख लूंगा मैं उस वक्त तक चैन से नहीं रहूंगा जब तक मैं उसको मार दूं या वो मुझे मार दे। ये एक बच्चे की कैसा बच्चा, इतने में वो जो दूसरा दूसरी तरफ लड़का खड़ा हुआ था उसने भी यही सवाल किया, आपको अबू जहल का पता है? कहते हाँ, तुम्हें क्या लेना देना उससे? मुझे पता चला है कि वो मेरे प्यारे नबी को सताता था, उनके खिलाफ बोलता है, मुझे उसका पता बताए आज वो रहेगा या मैं रहूंगा, और मैंने सुना उसको कोई नहीं मार सकता, वो बड़ी हिफाजत में रहता है। कहते इत्तेफाकन मैदान में मुझे अबू जहल नजर आ गया, मैंने उन दोनों से कहा वो है अबू जहल जिसका तुम पूछ रहे थे, वो जा रहा है। ये बात सुनते ही वो दोनों लड़के जो थे वो तलवारें हाथ में लिए तीर की तरह निकले, ये दोनों पैदल थे। आपको पता है बदर की जंग में तो वैसे ही मुसलमानों के पास माल असबाब तो कम था, हथियार भी कम थे, सवारियां तो ना होने के बराबर थी, और अबू जहल था घोड़े पे, वो उस वक्त सफेद रोज कर रहा था। कहते हैं अब ये जब सोचे घुड़सवार के ऊपर हमला करना पैदल के लिए कितना मुश्किल है। कहते हैं एक लड़के ने घोड़े पे हमला किया और दूसरे ने अबू जहल की टांग पे, जिससे घोड़ा घोड़ा तो गिर गया, अबू जहल भी साथ ही, अबू जहल का बेटा इकरमा साथ था, उसने जब ये देखा तो वो लपका और एक लड़के के कंधे पे हमला किया जिससे उसका बाजू कट गया, सिर्फ खाल में लटका हुआ झूलने लगा। कहते हैं मैंने देखा उसने इस लटके हुए बाजू को कमर के पीछे डाल दिया और सारा दिन दूसरे हाथ से लड़ता रहा। आप सोचिए इनको कैसी मोहब्बत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये कहते हैं वो मेरे नबी के खिलाफ बोलता है तो आज मैंने उसको नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह, उनकी मोहब्बतें भी बेमिसाल थी, उन्होंने मोहब्बतों के ऐसे जुबानी कलामी दावे नहीं किए। एक सहाबी थे सुभान अल्लाह, वो किसी और मुल्क गए तो वहां पे उनके हाथ से रोटी का टुकड़ा गिर गया, उन्होंने उठा के झाड़ के और अभी खाने लगे थे तो दूसरे सहाबी थे, उन्होंने फरमाया आप ये क्यों खा रहे हैं, तो गैर मुस्लिम वो लोग क्या समझेंगे कि हम इतने वो ऐसे हैं कि हम नीचे से उठा के खाते हैं। मैं गैर मुस्लिमों की परवाह नहीं करता, मेरे नबी की ये सुन्नत है तो मुझे अपने नबी की सुन्नत प्यार है, रोटी का टुकड़ा झाड़ के मैं यहाँ पे आके अपने नबी की सुन्नत थोड़ी छोड़ दूंगा। उनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीका प्यारा था, एक एक तरीका उन्होंने सीने से लगाया था, जान कुर्बान करने और माल कुर्बान करने का तो हमने जैसे कई वाकयात के अंदर सुना है। आप इससे अंदाजा लगाइए, यानी आप सोचते होंगे कि हाँ सहाबा को तो मोहब्बत थी और उनके बनाए हुए बताए हुए किस्से, और इससे अंदाजा करें कि दुश्मन कहते थे, दुश्मन कहते थे कि हमने बड़े बड़े बादशाहों की मजलिस देखी, अबू सुफियान ने खुद कहा बड़े बड़े बादशाहों के महल देखे, बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गए, लेकिन जो मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके सहाबा कराम की देखी वो कहीं और नहीं देखी, कैसर और किसरा के महलों में भी नहीं देखी, ऐसी मोहब्बत थी। तो उन्होंने मोहब्बतें करके क्या किया, कैसे उन्होंने अपनी सिर्फ जुबानी कलामी दावे किए या जिंदगियां वैसे गुजार के दिखाई, या आप ये एक एक तरीके को सीने से लगाए, यानी आप इसे अंदाजा कीजिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया और फरमाया कि कि तुम जो मेरे से बात ले रहे हो इसको आगे पहुंचाओ, जो तुम आज जो लोग मेरे साथ सुन रहे हैं उनको पहुंचाएं आगे जिन तक ये बात नहीं पहुंची। तो सहाबा कराम उसके बाद एक मीटिंग करने बैठ गए कि हम कैसे आगे बात पहुंचाएंगे, क्या हम तरीके अपनाएं कि आगे बात पहुंचाई जाए, क्योंकि उनका एम क्या था, उन्होंने मिशन क्या बनाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन है वो हमारा मिशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या चीज थी वो? इस दीन के लिए, जिस दीन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजियतें बर्दाश्त की, आप सबको पता है, गालियां खाई, तशद्दुद सहा, अपना वतन छोड़ा, मक्के को छोड़ा, औलाद पे अजियत सही। आपको पता है ना, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दावत देना शुरू की थी तो अबू लहब के दो बेटों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का निकाह हुआ था, दोनों को तलाक दे दी गई। अबू लहब ने अपने बेटे से बेटों से कहा कि मैं राजी नहीं हूंगा उस वक्त तक तुम लोगों से जब तक तुम इन दोनों को तलाक ना दे दो। दोनों घर बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के जरिए भी कुर्बानी दी, उसकी औलाद की अजियत भी सही। इंसान अपने ऊपर अजियत बर्दाश्त कर लेता, औलाद के ऊपर नहीं बर्दाश्त कर पाता। अपने सहाबा कराम की कुर्बानियों को भी सहा, अपने प्यारों के दिल भी छलनी होते देखे, अपने महबूब चचा की शहादत को भी बर्दाश्त किया। 3 साल शिबे अभी तालिब में भी मैसूर रहे, जंगे लड़े, खून बहाया, किस चीज के लिए? अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपनी सरदारी के लिए। बादशाह बनना था उन्होंने, उनको कोई लालच था क्या? वो तो काफरों ने खुद आके कह दिया था, आप बताएं हमें, हम आपको मक्के की सरदारी दे देते, आप बताएं अगर आपने किसी लड़की से शादी करनी है हम आपकी शादी करा देते, आपको कोई खजाने चाहिए हम वो ला देते, अगर आपने कोई इलाज अपना कराना है, अगर आपको कोई और जुनून हो गया तो हम वो आपका इलाज करवा देते, हमें बताएं। क्या चीज थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कुर्बानियां दी? उस मक्के को छोड़ा के जब जा रहे थे तो फरमाया था, मक्का मैं नहीं तुझे छोड़ना चाहता मगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। इतनी प्यारी जगह थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसके लिए छोड़ा ये सब, किसके लिए, किस चीज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़पते रहे? ना दिन को चैन था ना रात को, अल्लाह ताला को खुद तसल्लियां देनी पड़ी। फला अल्लाह कबाखे उन नफ्सा का अला अथारिहम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस या सफा। ऐ नबी, आप अपने आप को हलकान कर लेंगे इनके पीछे कि ये ईमान नहीं लेकर आते? फला तज़हब नफ्सका अलैहिम हसरात, कहीं आप आहें भरते भरते मर ना जाए। अल्लाह ताला तसल्लियां दे रहे हैं, वो क्या गम था आपको, किस चीज ने आपको, आपके सीने को ऐसी एक तड़प लगा दी थी, आपके सीने में ऐसा एक गम था, ऐसा एक दर्द था, किस चीज का कि ये ईमान ले आए? ये था आपका मिशन और सहाबा ने आपके मिशन को पूरा किया, उसको सीने से लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी इसी मिशन की तकमील के लिए कुर्बानियां देते देते गुजर गई। वो ऐसे नहीं बैठे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जालियों को पकड़ के बैठ जाते वो भी मदीना और कहते कि बस ठीक है हम यहीं पे अल्लाह तौबा करते रहेंगे। आज आप देखिए, आपको पता है सहाबा किराम की कब्रें कहाँ कहाँ, कहीं जॉर्डन में, कहीं सीरिया में, कहीं यमन में, कहीं फलस्तीन में, क्यों है वो वहां, क्या लेने गए थे वहां पे? अपने बिजनेस चिपकाने, कोई कैरियर बनाने, क्या करने गए थे? इस दीन की दावत देने के लिए, इस दीन की खातिर, ताकि इस पर खुद भी चलें और दूसरों को भी दावत दें। उन्होंने दीन को कुर्बानी की सतह पे लिया था, उन्होंने दीन को हमारी तरह नहीं लिया था कि बस नमाज पढ़ ली तो दीन मुकम्मल है, बस ठीक है, वो नमाज भी पढ़ लेता है तो कहते हैं सुनो सलात की पाबंद है, बड़ी दीनदार, ये तो हमारे दीन का मयार, बस इसको दीनदार कहते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमने तो इसको मेरिट बनाया था ना, लेकिन उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइसेस, कुर्बानियां, घर भी छोड़े, काम भी छोड़े, कारोबार भी छोड़े, निकले दीन के लिए, इसको अपना मिशन बनाया, जिंदगी का मकसद बनाया। ठीक है, आपको कोई नहीं कहता कि आप अपने घरों को छोड़ें, निकलें, आप दीन को फैलाने के लिए, اسی طرح سینے سے لگائی جیسے پھر صحابہ کرام نے لگایا، کیونکہ وہ دین جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے رسول کہلائے، اگر اسی کو آپ نے نہیں اپنایا تو اس طرح تو محبت ابو طالب کو بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس طرح سے محبت تو ابو لہب کو بھی تھی، آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب نے جو لونڈی آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری لے کر، اس نے کہا تھا اتنی بڑی تو خوشخبری لے کر آئی، ظاہر ہے چچا کا، اس نے کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو ان کی محبت قبائل کے اندر، ویسے بھی اس وقت قبیلے کے میں لوگ رہا کرتے تھے تو قبائلی محبتیں تو تھیں آپس کے اندر رشتے داریوں کی وجہ سے، آپس کے اندر ایک تعلق کی وجہ سے، لیکن وہ محبت تو کام نہ آئی، اس محبت کی کوئی ویلیو نہیں. محبت وہ جو دین کی وجہ سے، جو آپ کے رسول ہونے کی وجہ سے ہمیں آپ سے ہو کہ آپ یہ دین ہم تک لے کر، اسی دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے قربانیاں دی. آج ان قربانیوں پہ ہم روتے تو بہت ہیں، ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ اٹھائے، بڑی تکلیف اٹھائی، اس کے بعد واٹ نیکسٹ دین، انہوں نے تکلیف اٹھائی پھر آگے اب ہم کیا کر رہے ہیں، کیا یہ دین ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے، ہم نے آگے کیا پھیلانا، ہم تو پہلے خود تو اس کو لیں، خود تو اپنائیں، ہم نے تو خود ہی چھوڑ دیا. معلوم ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ کیا ہے، نبیوں کا جو ورثہ ہوتا ہے نا وراثت، وہ درہم دینار جائیدادیں نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں، یعنی نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم کا ورثہ چھوڑ کے جاتے ہیں، علم ہے ان کی وراثت. اب وہ جو وراثت چھوڑ کے گئے ہیں وہ قرآن ہے. اب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہے، کیونکہ آپ نبیوں نے تو نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے، لیکن جو وراثت آپ نے چھوڑی وہ یہ علم کی وراثت چھوڑی، یہ قرآن کی وراثت چھوڑی. یہ بتائیے کوئی آپ کے پیارے کوئی وراثت چھوڑے اور ان کے جو وارث ہیں وہ ان کی محنت کی کمائیوں سے اور جو ان کی قربانیوں کے بعد جو انہوں نے جمع کیا، جو انہوں نے بنایا کچھ، جو ابھی زمین ہے جائیداد ہے، آج کل تو یہی وراثت ہوتی ہے نا، تو وہ جو چھوڑ کے گئے ہیں اگر پیچھے ان کے وارث اس کو تباہ و برباد کر دیں، اس کو ضائع کر دیں، کیسا لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کتنے ناہنجار وارث ہیں، کتنے نالائق وارث ہیں، انہوں نے دیکھو اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اتنی محنتیں کی تھی، انہوں نے ایسا کیا. اور یہ وراثت ہی وہ چیز ہے کہ آج دیکھیں گھر گھر میں جھگڑے، بھائی بھائی کا نام نہیں سننا چاہتا، ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہیں، ساری ساری زندگیاں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، قطع تعلق ہی کر دیتے. کس لیے؟ وراثتوں کے لیے نا، زمینوں جائیدادوں کے لیے نا، ایک ایک انچ زمین کے لیے، اور ساری ساری زندگی مقدمے چلتے رہتے. دنیا کی وراثتوں کے لیے اتنا مرتے ہیں، اور جو نبی کی وراثت ہے اس کی کسی کو فکر نہیں، کسی کو نہیں پرواہ ہے کہ یہ بھی ایک وراثت ہے جو ہمارے لیے وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور ہمیں اس وراثت کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں وارث، ہمیں اس کو سینے سے لگانا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اس وراثت کو ہم نے لے کے اپنی زندگیوں میں اس کو اپنانا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے، ہم وارث ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی ہمیں اس چیز کی طرف لے کر آتی ہے، ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی وراثت کو اپنائیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کی طرف کو آئیں، اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا دیا، اسی طرح آپ کی وراثت کے ساتھ بھی ہم نے کوئی تعلق نہیں رکھا. تو کیا قیامت کے دن جب ان کے ساتھ سامنا ہوگا، کیونکہ قیامت کے دن تو ملاقات ہوگی نا، حشر کے دن تو ملاقات ہوگی، کیا ان سے سامنا کر سکیں گے؟ خود سوچیں، کیا ان کو یہ ہم اپنے منہ دکھا سکیں گے کہ ہم نے تو آپ کے پیچھے سے یہ کیا، ہم تو بس ایک دن منا لیا کرتے تھے اور بس بیٹھ جاتے تھے اور کچھ دو تین نعتیں پڑھنی اور رو لیے، اور پھر ہم نے کہا کہ ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، تو ہماری محبت ٹھیک ہے، آپ کو بہت محبت ہے. ایک کوئی انسان یہ کہے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بچے آپ کو کہیں بہت محبت ہے، لیکن میں آپ کا ماننا کہنا ایک بھی نہیں، آپ کہیں ये कैसी मोहब्बत है। तो आप जितने मर्जी कसीदे पढ़ें, जितने मर्जी अशार पढ़ें, लेकिन आफ्टर दैट आपका क्या काम बनता है? उस नबी की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर आए। क्या आज हमारी खुशियां गम उस तरह ही मनाए जाते हैं जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते थे? हमारी खुशियों के तरीके वही हैं? क्या हमने अपनी खुशियों के दिनों में, अपनी शादियों पर, अपने और जितने भी हमारी खुशियों के दिन, क्या हम उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाते हैं या तरीकों को जिबा कर रहे हैं? क्या कयामत के दिन वो ना हमसे पूछेंगे कि तुमने मेरे ही तरीके रह गए थे जिनको जिबा करना था, मेरी सुन्नतें ऐसी रह गई थी जिनका तुमने गला घोटना, कि हमारी जिंदगी में कोई उनकी सुन्नत नजर नहीं आती? अब हम कहें नहीं, हमारे तो बच्चे जिद करते हैं और हमारे तो क्लास जिद करते हैं। उन्होंने नहीं अपने बच्चों की कुर्बानी की? क्या उन्होंने अपने बच्चों की ख्वाहिशात का गला नहीं घोटा? हम कहते हैं हमारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, तो क्या हमारे बच्चे फातिमा से ज्यादा प्यारे हैं? क्या हमारे बच्चे हसन और हुसैन से ज्यादा प्यारे? इसी तरह अपने गमों के मौके देख, जब किसी का दुनिया से जाने का मौका होता है उस वक्त कितनी सुन्नत के मुताबिक चलते हैं? उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त कहते नहीं दुनियादारी है ना, देखे अब क्या करें, हमने यहाँ पे रहना भी तो है। आपको अंदाजा लगा कि हर हर जगह पे जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी से कुछ लेने का मौका आता है, यहाँ पे हम ये कह देते हैं अगर हमने दुनिया में रहना भी तो है, क्या करें, जमाने के साथ चलना भी तो है, तो फिर ये मोहब्बतों के दावे तो झूठे हैं। क्योंकि जब दो में से एक को चूज करने का मौका आता है कि एक तरफ अल्लाह के नबी का तरीका है और एक तरफ आपकी दुनियादारी, तो आप किस चीज को चूज करते हैं, आप किस तरीके पे चलते हैं? लेकिन ये मैं नहीं आपसे डिमांड करूंगी कि नहीं आपको बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना चाहिए और ऐसे करना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं। जब तक उनकी मोहब्बत इतनी स्ट्रॉन्ग दिल में ना हो जाए कि आपको हर चीज से ज्यादा वो प्यारे हो जाए, आप कहें जाए भाड़ में सारी दुनिया, मुझे नहीं कोई परवाह, मेरे नबी का तरीका सर आंखों पे, उनके तरीके को ना कुर्बान करूंगी, सबको नाराज कर सकती, बरादरी को नाराज कर दूंगी, उनके तरीके को नहीं छोड़ सकती। अब बात बनी ना कि आपको मोहब्बत है और तभी आपका ईमान मुकम्मल है, अदरवाइज तो ईमान भी मुकम्मल है और मोहब्बत के दावे भी झूठे हैं। और इस मोहब्बत को पैदा करने के लिए उनकी सीरत को स्टडी कीजिए, उनकी विरासत को सीने से लगाइए, इस कुरान की तरफ आइए, इस कुरान के लिए वक्त निकालिए। क्या आप चाहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन ये शिकायत करें? ये तो कुरान में आता है, आप चेक कर लें सूरह कुरान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फरमाएंगे कि या अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, मेरे उम्मतीनों ने इस कुरान को छोड़ दिया था। क्या जवाब देंगे? ये वो जब खुद ही खिलाफ हो जाए, जिनकी शिफात के लिए आप मुंतजिर हैं कि वो तो वहां पे हमारी शिफात करेंगे, अगर वो खुद ही आपकी शिकायत करने वाले बन गए, ना हो कि शिफात की जगह शिकायत हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला उनसे मोहब्बत निभानी है और उसके लिए कुरान को अपना रहनुमा बनाना है, कुरान से गाइडेंस लेनी है। क्योंकि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है लेकिन कुरान छोड़ के गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वो थी कि जो कुरान के मुताबिक चली, कि जिसके बारे में हजरत आयशा से जब पूछा गया कि आपकी जिंदगी कैसी है, तो उन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान थे। यानी अगर आपने देखना है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, तो कुरान पढ़ लें, वो चलता फिरता कुरान थे। तो जो चलता फिरता कुरान है उनके जैसा बनना है, कुरान के करीब आए, इसको अपने जिंदगी में शामिल करें। और चलो बहुत ज्यादा नहीं, मैं कहती हूँ कहती कि आप हर वक्त कुरान ही पढ़ती जा रही हैं, या मैं कहती हूँ हफ्ते में एक दफा भी ये करा, हफ्ते में एक दफा भी चंद घंटे, या अब मैं तो आपको कहेंगे एक दो घंटे भी निकाल लें आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकाल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला आप वो कुरान जब सीखने के लिए आएंगे तो इंशाल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के बारे में भी हमें इल्म होगा, फिर आपकी ज़िंदगी के बारे में भी इल्म होगा। और एक सुन्नत भी अगर आप जिंदा करते हैं, अगर आज आप इतना ही मैसेज लेके उठें कि एक तो हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और दूसरे कि आज एक सुन्नत को हमने ज़रूर जिंदा करना है। ये सुन्नतें भी मिट गई हैं तो इनको जिंदा करने की ज़रूरत है ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन आंख मिला सके, कोई पता तो चले कि हम उनकी उम्मत ही हैं। ये तो ना हो कि उम्मत ही नाम की तो उम्मत ही है और काम हमारे बिल्कुल गैर उम्मतियों वाले। तो आज हम कहते तो हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार करने का हमें शौक है, तो अपने आप को उनके दीदार करने के काबिल बना, जिन कामों से उन्होंने मना किया है उन कामों से रुक जाना, उनको छोड़ देना, और जिन कामों को करने का हुक्म दिया उन कामों को अपनी जिंदगी में शामिल करना। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, अल्लाह ताला हमारे ईमान कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम मोहब्बत का वो हक अदा कर सकें जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका वनतूबु इलैक।